यूएन रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 2 अक्टूबर 2020 के बुलेटिन की सुर्खियां। यूएन महासभा के 75वें सत्र की जनरल डिबेट हुई समाप्त। देशों के नेताओं ने वर्चुअल शिरकत करके दुनिया के सामने रखी अपनी बात। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर ऐतिहासिक 4th बीजिंग विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ। बायोडायवर्सिटी सहेजने की खातिर पर्यावरण के साथ इंसानों का संबंध फिर स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर जोर। भारत की राजधानी दिल्ली में रेलवे पटरी के नजदीक बने घरों में रहने वालों को बेदखल किए जाने पर मानवाधिकार विशेषज्ञ की चिंता। SDG चैंपियन जहीन रजीन का काम मानव विकास के लिए कैसे है खास। और कोरोना वायरस के कारण मौतें हुई 10 लाख से ज्यादा। COVID-19 अपडेट के साथ साथ कुछ अन्य समाचार भी। हम आपको याद दिलाते चलें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव यानी विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर अवश्य आएं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष यानी PGA वोल्कान बोस्किन ने जनरल डिबेट का समापन करते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि वैश्विक नेता और प्रतिनिधि महासभा के वार्षिक सत्र में व्यक्तिगत मौजूदगी के साथ शिरकत नहीं कर पाए। मंगलवार को उन्होंने कहा कि फिर भी COVID-19 से बचने के लिए किए गए एहतियाती उपाय बहुपक्षवाद को उच्चतम स्तर पर होने से नहीं रोक पाए। वोल्कान बोस्किन ने महासभा की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित उच्चस्तरीय खंड का समापन करते हुए कहा कि ये बैठक सार्थक और असाधारण रही जो वैश्विक महामारी COVID-19 के माहौल में आयोजित करनी पड़ी।
Through their virtual presence, our political leaders have demonstrated their commitment to multilateralism and the United Nations. The vast majority confirmed this commitment in their speeches.
वोल्कान बोस्किन कह रहे थे कि विश्व नेताओं ने इतनी बड़ी संख्या में अपनी वर्चुअल मौजूदगी के जरिए बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र को अपना समर्थन जताया है। बहुत बड़ी संख्या में नेताओं ने अपने भाषणों में इस प्रतिबद्धता को जाहिर भी किया। बहुत से नेताओं ने खासतौर पर यह भी कहा कि बहुपक्षवाद वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी व्यवस्था मुहैया कराता है, जैसे कि COVID-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन। 75वीं महासभा के अध्यक्ष वोल्कान बोस्किन के शब्द। उन्होंने कहा कि ये तथ्य कि इतनी बड़ी संख्या में विश्व नेताओं ने यूएन महासभा को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करने का विकल्प चुना, ये अपने आप में संयुक्त राष्ट्र की शक्ति व प्रासंगिकता का सबूत है। गौरतलब है कि COVID-19 महामारी का सामना करने के एहतियाती उपायों के तहत यूएन महासभा के जुलाई में लिए गए एक निर्णय के तहत विश्व नेताओं को यूएन मुख्यालय आने के बजाय उनके पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेशों के जरिए जनरल डिबेट में शिरकत कराई गई। मतलब ये कि इस बार सदस्य देशों के मिशनों के प्रतिनिधि ही महासभा हॉल में मौजूद रहे, जिनकी संख्या तुलनात्मक रूप में काफ़ी कम थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने सचेत किया है कि यदि देशों ने COVID-19 के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए अभी कार्रवाई नहीं की तो लैंगिक समानता के मुद्दे पर हुई प्रगति मुश्किल में पड़ जाएगी। यूएन महासचिव ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर ऐतिहासिक 4th बीजिंग विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ पर गुरुवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में सरकारों का आह्वान किया कि महामारी पर जवाबी कार्रवाई और पुनर्बहाली प्रक्रिया के केंद्र में महिलाओं को रखना होगा। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
चीन की राजधानी बीजिंग में 25 वर्ष पहले आयोजित इस सम्मेलन के जरिए महिला अधिकारों को वैश्विक एजेंडा में ऊपर रखने के प्रयासों में मदद मिली थी। बीजिंग सम्मेलन का समापन एक अभूतपूर्व प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के साथ हुआ था जो 12 क्षेत्रों में लिए गए संकल्पों पर आधारित था। इनमें शक्ति व निर्णय प्रक्रिया, निर्धनता, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, शिक्षा, मानवाधिकार और लड़कियों के साथ भेदभाव सहित चिंता के अन्य कारण शामिल थे। विभिन्न UN एजेंसियों के मुताबिक इस सम्मेलन के बाद से लैंगिक समानता के लिए वैश्विक लड़ाई में व्यापक प्रगति हुई है। वर्ष 1995 में 12 देशों में राष्ट्राध्यक्ष व सरकार प्रमुख महिलाएं थी, अब ये संख्या बढ़कर 22 हो चुकी है। मातृत्व मृत्यु दर में 40% की कमी आई है। पहले से कहीं बड़ी संख्या में लड़कियां अब स्कूल जा रही हैं और महिलाएं शांति प्रक्रियाओं में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। लेकिन महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था की कार्यकारी निदेशक पुमजिले मलाम्बो निगुका ने कहा कि प्रगति की रफ्तार धीमी रही है और ये पर्याप्त भी नहीं है। यूएन संस्था की प्रमुख ने कोविड-19 महामारी के बाद के दौर में बेहतर पुनर्बहाली के लिए महिला नेतृत्व, विशेषतः युवा महिला नेत्रियों को भूमिका दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है।
The women of the world believe in the UN and solidarity of nations, and that we, the peoples,
कार्यकारी निदेशक मलाम्बो निगुका कह रही थी कि दुनिया की महिलाओं का संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रों की एकजुटता में भरोसा है और इस बात में भी कि हम सभी मिलकर भविष्य बदल सकते हैं। यूएन एजेंसी की कार्यकारी निदेशक के मुताबिक ये समय महिलाओं व लड़कियों के लिए इतिहास की दिशा बदल देने वाली कार्रवाई का है, विशेष रूप से 25 से 34 वर्ष की उम्र की महिलाओं के लिए जो अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में ज्यादा निर्धनता में रहने के लिए मजबूर है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि मानवता प्रकृति के मुकाबले एक युद्ध लड़ रही है जिस पर तत्काल विराम लगाए जाने और पर्यावरण के साथ इंसानों के संबंध को पुनर्स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। बुधवार को बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता मुद्दे पर आयोजित एक अहम शिखर बैठक में पर्यावरण कार्यकर्ताओं और शीर्ष यूएन अधिकारियों ने टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए जैविक संरक्षण की पुकार लगाई। महासचिव गुटेरेश ने बैठक को संबोधित करते हुए आगाह किया कि वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और वन्य जीवन का भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाने से पृथ्वी पर जीवन चक्र के समक्ष संकट पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस नाजुक बनावट का हिस्सा हैं और हमें इसे स्वस्थ रखने की जरूरत है ताकि हम और भावी पीढ़ियां फल फूल सकें। इस शिखर बैठक का उद्देश्य बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए महत्वाकांक्षा का दायरा बढ़ाना है। यूएन प्रमुख ने ध्यान दिलाते हुए कहा कि बार बार लिए गए संकल्पों के बावजूद इस वर्ष वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों को हासिल करने में प्रयास पर्याप्त साबित नहीं हुए हैं। यूएन प्रमुख ने बायोडायवर्सिटी के संरक्षण व टिकाऊ प्रबंधन के लिए तीन प्राथमिकताओं पर बल दिए जाने का आह्वान किया। पहली प्राथमिकता कोविड-19 से पुनर्बहाली और व्यापक विकास योजनाओं में प्रकृति आधारित समाधान समाहित किए जाने होंगे। वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के जरिए रोजगार सृजन व उपलब्धता और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित किए जा सकते हैं, जिसकी आज सख्त जरूरत है। साथ ही इन उपायों से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भी मदद मिलेगी। दूसरी प्राथमिकता आर्थिक प्रणालियों व वित्तीय बाजारों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संरक्षण प्रयासों में संसाधन निवेश करने होंगे। और तीसरी प्राथमिकता के रूप में यूएन प्रमुख ने ऐसी महत्वाकांक्षी नीतियां व लक्ष्य अपनाने का आग्रह किया जिनसे जैव विविधता की रक्षा की जाएगी और किसी को भी पीछे नहीं छूटने दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली मौतों की संख्या 10 लाख होने पर कहा है कि निसंदेह ये आंकड़ा एक तकलीफदेह पड़ाव के रूप में हमारे दिमागों को सुन्न करने वाला है, मगर विश्व को हर एक इंसान की जिंदगी को नज़रों से ओझल नहीं होने देना होगा। यूएन प्रमुख ने सोमवार रात को जारी एक वक्तव्य में कहा कि अपने प्रियजनों को खो देने की तकलीफ महामारी की विकरालता के कारण कई गुना ज्यादा गहरी हो गई है। संक्रमण के खतरे ने प्रियजनों को अपने परिवारों से दूर रखा हुआ है और किसी की जिंदगी खत्म हो जाने पर शोक या किसी नए जीवन के आगमन पर खुशियां मनाने की प्रक्रिया लगभग असंभव हो गई है।
They were fathers and mothers, wives and husbands, brothers and sisters, friends and colleagues. How do you say goodbye without holding a hand or extending a gentle kiss, a warm embrace, a final whispered, I love you?
यूएन महासचिव कह रहे थे कि कोविड-19 के कारण जिनकी जिंदगी खत्म हो गई वो लोग माता व पिता थे, पत्नी और पति थे, भाई और बहन थे, दोस्त और सहयोगी थे। किसी का हाथ थामे बिना या प्यार भरा चुंबन दिए बिना या फिर जोश के साथ झप्पी दिए बिना और फुसफुसाहट भरी आवाज में आई लव यू कहे बिना भला किसी को विदा कैसे कहा जा सकता है। इस सब के बावजूद कोरोना वायरस के फैलाव, रोजगार, कामकाज व आमदनी खत्म होने के सिलसिले, शिक्षा में पैदा हुए व्यवधान और हमारी जिंदगी में मची उथल पुथल का अभी कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेश के शब्द। महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने सभी देशों से वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ एक असरदार वैक्सीन को हर किसी के लिए हर एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए जरूरी वित्तीय संसाधनों का तत्काल इंतजाम किए जाने की पुकार भी लगाई। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहनॉम गेब्रेसस ने बताया कि UN एजेंसी अपने साझेदार संगठनों के साथ मिलकर कोरोना वायरस संक्रमण का मिनटों में पता लगाने वाली रैपिड टेस्ट किटें तैयार करने में जुटी है। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
कोविड-19 महामारी पर काबू पाने की वैश्विक कार्रवाई में एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सेलरेटर एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके जरिए वैक्सीन, उपचार और निदान तेजी से विकसित करने और उसके न्याय संगत वितरण के प्रयासों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वर्ष अप्रैल में शुरू हुई इस पहल के लिए अब तक $3 अरब की राशि जुटाई गई है, लेकिन ये रकम पर्याप्त नहीं है। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने बुधवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि इन प्रयासों को परिणति तक पहुँचाने के लिए $35 अरब की धनराशि की आवश्यकता है। इसके बराबर धनराशि दुनिया में लोग हर 2 सप्ताह में अपनी सिगरेटों के लिए खर्च कर देते हैं।
It is in every country's national and economic self-interest to work together to massively expand access to tests and treatments.
महासचिव बता रहे थे कि परीक्षण और उपचार का दायरा व्यापक करने और वैश्विक कल्याण के लिए जनता वैक्सीन को हर स्थान पर हर एक व्यक्ति को उपलब्ध कराने के लिए समर्थन देना सभी देशों के राष्ट्रीय और आर्थिक हित में है। इन प्रयासों के लिए वित्तीय संसाधनों का अभी इंतजाम करना बेहद अहम है, ताकि रिसर्च के साथ साथ वैक्सीन विकसित होने की स्थिति में पहले से खरीद, उत्पादन और लाइसेंसिंग को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए तैयारी की जा सके। कोरोना वायरस संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था को हर महीने $375 अरब की क्षति पहुंच रही है और अब तक 50 करोड़ रोजगार तबाह हो चुके हैं। इस बीच UN स्वास्थ्य एजेंसी और उसके साझेदार संगठन कोविड-19 टेस्ट के लिए 12 करोड़ त्वरित परीक्षण किटों को 130 से ज्यादा देशों में मुहैया कराने के कार्य में जुटे हैं। प्रति यूनिट $5 कीमत वाली ऐसी 12 करोड़ परीक्षण किटें अगले 6 महीनों में तैयार की जाएंगी, जिनसे निम्न और मध्य आय वाले देशों में परीक्षणों का दायरा बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। नई परीक्षण किटों के जरिए विश्वसनीय नतीजे कम कीमतों में घंटों या दिनों के बजाय 15 से 30 मिनट में हासिल किए जा सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र के एक मानवाधिकार विशेषज्ञ ने भारत की राजधानी दिल्ली में रेलवे पटरियों के किनारे रहने वाले लगभग 2.5 लाख लोगों को अपने घरों से बेदखल करने के भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस तरह के कदम से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अधिकार संधियों के तहत देशों के दायित्वों का उल्लंघन होगा। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
पर्याप्त आवास संबंधी अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष रिपोर्टर बालकृष्णन राजगोपाल ने दिल्ली में रेलवे पटरियों के किनारे रह रहे करीब 2.5 लाख लोगों को उन्हें अपनी बात रखने या उनके साथ कोई भी परामर्श किए बिना ही निष्कासित करने के फैसले पर चिंता व्यक्त की। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने राजधानी दिल्ली में रेलवे पटरियों के पास रहने वाले लगभग 48,000 घरों के लिए 31 अगस्त 2020 को एक निष्कासन आदेश जारी किया था, जिसमें उन घरों में रहने वाले लोगों को घर खाली करने के लिए 3 महीने की मोहलत दी गई थी। बालकृष्णन राजगोपाल ने कहा कि न्यायालय ने प्रभावित लोगों में से किसी के साथ भी पहले बातचीत या सुनवाई नहीं की। स्वतंत्र विशेषज्ञ ने चिंता व्यक्त करते हुए ये भी कहा कि अदालत के शुरुआती फैसले में ये तक कहा गया था कि इस निष्कासन आदेश को पलटने का अधिकार किसी को भी नहीं होगा। विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि लोगों को बेघर करने की कोई भी कोशिश आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार के तहत मानव अधिकारों को लेकर भारत के दायित्वों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। हालांकि बालकृष्णन राजगोपाल ने उच्चतम न्यायालय द्वारा बेदखली आदेश को अस्थायी रूप से रोकने के दूसरे फैसले का भी स्वागत किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इसके तहत दी गई 4 सप्ताह की अवधि इतने सारे परिवारों के साथ परामर्श करके अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उचित पुनर्वास या पुनर्वास योजना पूरा करने के लिए अपर्याप्त होगी। साथ ही स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने भारत सरकार से कोविड-19 वायरस के सामुदायिक प्रसार से बचने के लिए अपने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम या महामारी अधिनियम के तहत कोविड-19 के दौरान किसी भी व्यक्ति के निष्कासन पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि कोविड 19 महामारी के माहौल में दुनिया ऐसे गैर आनुपातिक और अत्यंत गंभीर प्रभावों का सामना कर रही है जो इस वायरस ने वृद्ध जन के स्वास्थ्य अधिकारों और रहन सहन पर छोड़े हैं। यूएन महासचिव ने ये विचार हर वर्ष 1 अक्टूबर को मनाए जाने वाले वृद्ध जन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर व्यक्त किए हैं। कुछ और जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
महासचिव ने कहा कि कोविड 19 पर काबू पाने के हमारे प्रयासों में वृद्धजन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस वर्ष के आयोजन के नारे के अनुरूप हमें यह भी पड़ताल करनी चाहिए कि अपने समाजों में उम्र और वृद्धावस्था की चुनौतियों का सामना करने का हमारा तरीका किस तरह बदला जा सकता है। वृद्धजन के लिए अवसरों का विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं, पेंशन व सामाजिक संरक्षण तक उनकी पहुंच निर्णायक साबित होगी। एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि इस वर्ष इन आयोजनों के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स एवं दाई वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ भी मना रहे हैं, जिससे महामारी का सामना करने में नर्स और दाई जैसे स्वास्थ्य कर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका उजागर होती है। इन कामकाजों व पेशों में अधिकांश महिलाएं हैं, जिनमें से बहुत सी वृद्ध हो चुकी हैं। यही वे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारी और वृद्धजन माताओं एवं बच्चों की सेवा में समर्पित कर दिया। ये कहीं अधिक सहारा पाने के हकदार हैं। इस महामारी से बेहतर ढंग से उबरने के लिए मिलकर कोशिश करते हुए हमें स्वस्थ उम्रदराजी दशक 2020 से 2030 तक यानी डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग 2020-2030 में वृद्धजन, उनके परिवारों और समुदायों का जीवन सुधारने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए। वृद्धजन की क्षमताएं टिकाऊ विकास के लिए सशक्त आधार हैं। हमें अधिक समावेशी और वृद्धजन हितैषी समाजों की रचना के लिए उनकी आवाजों, सुझावों और विचारों को पहले की तुलना में अधिक ध्यान से सुनना चाहिए। इस बीच वृद्धजन के मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ क्लाउडिया महलर ने ध्यान दिलाते हुए कहा कि कोविड 19 महामारी ने वृद्धजन के मौजूदा मानवाधिकार उल्लंघन के मामले और ज्यादा गंभीर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, रोजगार और आजीविकाओं के मामले में वृद्धजन जिन असमानताओं का सामना करते हैं वो और ज्यादा बढ़ गई हैं और इसके बावजूद भी वो किसी को नजर नहीं आते हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि दुनिया भर में भोजन की बर्बादी और अपशिष्ट कम करने के लिए नए तरीके व समाधान अपनाने की सख्त जरूरत है। महासचिव ने मंगलवार 29 सितंबर को यह संदेश भोजन की बर्बादी और अपशिष्ट कम करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 में 29 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन यानी भोजन की बर्बादी बंद करने और अपशिष्ट कम करने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इस दिवस के जरिए खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देने, भोजन की बर्बादी रोकने व अपशिष्ट कम करने में टिकाऊ खाद्य उत्पादन की बुनियादी भूमिका को पहचान देने की कोशिश की जाएगी। इसके अतिरिक्त कोविड 19 महामारी ने खाद्य प्रणालियों की कमजोरियां उजागर कर दी हैं, जिससे अनेक देशों में भोजन की बर्बादी की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि भोजन की बर्बादी की स्थिति ने एक नैतिक कलंक का रूप ले लिया है। दुनिया में सभी इंसानों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, मगर फिर भी लगभग 69 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता और लगभग 3 अरब लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने लिए स्वस्थ खुराक का इंतजाम करने के वास्ते पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रों को आपस में जोड़ने और शांति, आपसी समझ व विकास को प्रोत्साहन देने में भाषा पेशेवरों की भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बुधवार 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में बहुभाषावाद को प्रोत्साहन देने के प्रयासों में इस दिवस की अहमियत बयान करती कुछ और जानकारी प्रतिष्ठा जैन से।
बहुभाषावाद संयुक्त राष्ट्र का एक बुनियादी मूल्य है। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं: अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र 500 से ज्यादा भाषाओं में अनुवादित किया गया है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। अनुवाद सेवाओं के जरिए बहुपक्षीय कूटनीतिक प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान भी अपना कामकाज निर्बाध रूप से जारी रखा है। इससे संगठन के कामकाज में सहिष्णुता को बढ़ावा देते हुए प्रभावी ढंग से सभी की भागीदारी, बेहतर प्रदर्शन व पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। किसी साहित्यिक, कूटनीतिक, तकनीकी या वैज्ञानिक सामग्री का एक भाषा से दूसरी भाषा में पेशेवर और सटीक अनुवाद के लिए भाषाई पकड़, व्याख्या और शब्दावली पर मजबूत पकड़ होना बेहद अहम है। इससे भावों के स्पष्ट संप्रेषण, अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक विमर्श व अंतरवैयक्तिक संचार यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए सकारात्मक माहौल का निर्माण सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। इस दिवस का उद्देश्य राष्ट्रों को एक साथ लाने, पारस्परिक संवाद को संभव बनाने, आपसी समझ व सहयोग बढ़ाने और विकास, शांति व सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने में भाषाई पेशेवरों के कार्य को रेखांकित करना है।
संयुक्त राष्ट्र ने टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयासों में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए हाल ही में विभिन्न देशों के 17 युवाओं को SDG चैंपियन घोषित किया है। इन्हीं में से एक हैं बांग्लादेश के जहीन रजीन। SDG को बढ़ावा देने में सहयोग के बारे में उनके कार्य और भविष्य की योजनाओं के बारे में हुई बातचीत पर आधारित अंशु शर्मा की एक रिपोर्ट।
जहीन रजीन एक तकनीकी विशेषज्ञ हैं जो दुनिया को उद्योग 5.0 की ओर ले जाने का सपना देखते हैं। उद्योग 5.0 यानी जहां उच्च गति के औद्योगिक स्वचालन की सटीकता और मनुष्यों का ज्ञान व कौशल परस्पर मिल जाए। इसी सोच के साथ जहीन ने क्वांटम पॉलीकेमिक्स बायोटेक्नोलॉजी नामक एक कंपनी की स्थापना की जो ऐसे जैविक पर्यावरण अनुकूल बायोपॉलीमर्स बनाते हैं जिनमें बिना प्रदूषण फैलाए समय के साथ नष्ट होने की क्षमता होती है। SDG से जुड़े उनके इस कार्य के बारे में जहीन रजीन ने बताया।
तो मुझको ये सम्मान मिला है फॉर बायोटेक्नोलॉजीज कमर्शियलाइजिंग बायोटेक्नोलॉजी फॉर डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी।
मुझे सम्मान बायोटेक्नोलॉजी के व्यवसायीकरण, शिक्षा टेक्नोलॉजी के लोकतंत्रीकरण और जल प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मिला है। टिकाऊ बायोप्लास्टिक पॉलीमर का कोई वैकल्पिक समाधान अभी तक नहीं है, इसलिए हमने अपनी कंपनी में बनाए हुए बायोपॉलीमर के जरिए नया टिकाऊ बायोप्लास्टिक पेश किया है।
संयुक्त राष्ट्र के युवा SDG चैंपियन जहीन रजीन के शब्द। जहीन का मकसद है दुनिया को एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना, जहां सभी प्रमुख कंपनियां अपनी पैकेजिंग, खाद्य सेवाओं, कृषि, कपड़ा आदि उद्योग में पर्यावरण अनुकूल बायोप्लास्टिक्स का ही इस्तेमाल करें। इससे हर साल 18 अरब पाउंड प्लास्टिक समुद्रों में जाने से बचेगा और अर्थव्यवस्था सुधरने के साथ साथ रोजगार के हजारों अवसर भी उत्पन्न होंगे। जहीन बताते हैं,
solve this global problem, plastic pollution, which is bigger than the pandemic. I think the pandemic is a byproduct of plastic pollution, or the spread is a byproduct of plastic pollution because COVID strains.
मैंने महसूस किया कि प्लास्टिक प्रदूषण की ये समस्या महामारी से भी बड़ी है और इसे हल करना होगा। मुझे लगता है कि ये महामारी भी प्लास्टिक प्रदूषण का उत्पाद है, क्योंकि कोविड का वायरस 3-4 दिनों तक प्लास्टिक पर जीवित रहता है। तो विचार आया कि प्लास्टिक उद्योग में कुछ बड़ा बदलाव लाया जाए। इसके लिए मैंने बुनियादी तथ्य तलाशने शुरू किए। हमें क्या चाहिए, क्या प्लास्टिक का कोई विकल्प है, क्या टिकाऊ प्लास्टिक जैसी कोई चीज उपलब्ध है। तो मुझे पता चला कि समाधान तो बहुत है, जिनमें से एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोनेट है जो हमारे वर्तमान पॉलीमर की तुलना में थोड़ा अधिक महंगा था, और फिर PLA था, पॉलीलैक्टिक एसिड। तब मुझे एहसास हुआ कि उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कम लागत लगे। इसलिए मैंने तकनीक का व्यवसायीकरण करने के लिए एक वैज्ञानिक से संपर्क किया, जिससे ये तकनीक लैब से बाहर आकर वास्तविक दुनिया में पहुंच सके।
संयुक्त राष्ट्र के युवा SDG चैंपियन जहीन रजीन के शब्द। जहीन का मानना है कि भविष्य के बेहतर निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास लक्ष्य हासिल करने बहुत जरूरी हैं, और अपनी नई भूमिका में वो इसके लिए दूसरे सभी युवा चैंपियनों के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे।
I potentially would like to collaborate with all my 16 fellow young leaders to see what the problems they're trying to solve and whether I could make that further
acceptable. मैं अपने सभी 16 अन्य युवा नेताओं के साथ सहयोग करना चाहूंगा कि वे कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर मैं अपने देश में उनके काम को आगे बढ़ा सकूं और साथ ही वो भी मेरे लिए ऐसा ही कर सके तो मुझे लगता है कि इससे वास्तव में वैश्विक स्तर पर सभी को फायदा हो सकता है।
इसके अलावा जहीन अपनी हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स R&D कंपनी के जरिए जल सुरक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने और स्वचालन की खोज कर रही कंपनियों के लिए पर्यावरण अनुकूल डिवाइसेस बनाने वाली कंपनियों की स्थापना और संचालन में भी लगे हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के मौके पर वैश्विक युद्ध विराम की अपनी पुकार फिर दोहराई है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्म दिवस यानी जयंती पर हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और वर्ष 2020 का ये दिवस कोरोना वायरस महामारी से हुई भारी मानवीय और सामाजिक आर्थिक तबाही की छाया में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने COVID-19 महामारी से बचने के लिए किए गए एहतियाती उपायों के कारण इस वर्ष ये कार्यक्रम वर्चुअली आयोजित किया। इस कार्यक्रम के बारे में कुछ और जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। हम आपको याद दिला दें कि आप अपने मोबाइल फोन पर हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है UN न्यूज रीडर। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अन्य सभी का खूब ख्याल रखिएगा।